भी हो लेकिन विश्वास है अपने गुरु पर। श्री साई राम, साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक दिव्य भजन से। करे थे कठोर उपनिषद के विषय में। ये उपनिषद आप यूं कहिए कि ये मृत्यु के साथ संवाद है। अब तक की कथा ये थी कि उदालक, जिसका नाम वाशरवस भी है या था, उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया, कुछ क्रिया करी, कुछ उपाय किए, उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र को नाम दिया नचिकेता। वाशरवस विश्वजीत नामक यज्ञ करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत से साधु संतों को आमंत्रण दिया। साथ में यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को, पुरोहित को, पुजारी को, साधु संतों को दान देने हेतु उन्होंने बहुत ही गायें इकट्ठे कर रखी थी। जैसे कि आज के जमाने में हम किसी पंडित को घर में बुलाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए, हम उसको दशहरा में कुछ पैसे दे देते हैं। उस जमाने में गाय दी जाती थी। नचिकेता ने देखा कि मेरे पिता ने जो गायें इकट्ठी की हैं, जो गौशाला में गायें बंधी हुई हैं, जिनको वह दान देना चाहते हैं यज्ञ के उपरांत, वो गाय दूध नहीं देती, बीमार है, बूढ़ी है, मरीज है, यूं कहिए कि किसी काम की नहीं है। विचार कीजिएगा, अगर वो गाय जिस ब्राह्मण को दी जाए, ब्राह्मण के लिए वो उल्टा समस्या हो जाएगी, उसको गाय की देखरेख करनी पड़ेगी, कोई फायदा बिल्कुल नहीं होगा। और बेचारा ब्राह्मण गाय को मार सकता नहीं है, छोड़ सकता नहीं है। नचिकेता को लगा कि मेरे पिता यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में जो आपके सबसे प्रिय वस्तु हो, प्रिय चीज हो, वो दान देनी चाहिए। और यहां तो मेरे पिता बूढ़ी गाय देना चाहते हैं, सारे संसार में उनको उपहास होगा, हंसी उड़ेगी उनकी। नहीं, मुझे अपने पिता को इस पाप से बचाना है। तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री आप मुझे किसको देंगे? पिता कुछ नहीं बोले। दोबारा पूछा, पिताजी आप मुझे किसको देंगे? पिता कुछ नहीं बोले। तीसरी बार नचिकेता ने प्रश्न किया, पिताजी यज्ञ के उपरांत आप मुझे किसको दान में देंगे? पिता ने क्रोध में आके कह दिया, मृत्वे त्वा ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ये सुनना था कि वहां पर सारे ऋषि मुनि तपस्वी अवाक रह गए। यहां पर नचिकेता अपने पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला ठीक है पिताजी, मैं यमराज के पास जाता हूं। अब यहां से नचिकेता यमराज के पास पहुंचते हैं। यमराज के पास वो कैसे पहुंचे, किस रास्ते से गए, वो अलग बात है। प्रश्न ये है, आपने शायद सुना होगा कि महाभारत में अर्जुन भी स्वर्गलोक गया था दिव्य अस्त्र के प्राप्ति के लिए। शरीर से गया था या शरीर को छोड़ के गया था, कैसे गया था अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जब अपनी विद्या अपने गुरु के पास संदीपनी नाम के गुरु थे वहां जब पूरी कर ली, उनको दक्षिणा हेतु उनका पुत्र स्वर्ग लोक से वापस ला के दिया था, ठीक है ना। तो यूं कहिए कि ये एक ऐसी क्रिया है जिससे आप यमराज के पास जा सकते हैं। नचिकेता यमराज के घर पे पहुंचा, यमराज घर पे नहीं थे। यूं कहिए कि मृत्यु देव कहीं गया हुए थे। अब जरा विचार कीजिएगा आप, नचिकेता मृत्यु के द्वार पे खड़ा होके दरवाजे को खटखटा रहा है और मृत्यु देव घर पे नहीं है। और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप संसार में दृष्टि डालें, जब भी मृत्यु घर पे आती है आप घर में मिलते हैं। मृत्यु जब भी जिसको आनी है वो बिना बताए आती है और आप मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मृत्यु बस में भी हो सकती है, गाड़ी में भी हो सकती है, सोते हुए भी हो सकती है, कई तरीकों से हो सकती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप संयम मृत्यु के पास जाते हैं तो मृत्यु आपको नहीं मिलती। संयम मृत्यु के पास कौन जा सकता है, जिसको मृत्यु का डर ना हो, जिसने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया हो, जो मृत्यु को समझ रहा हो या समझ लिया हो। ये उपनिषद, ये जो उपनिषद है वटोपनिषद, ये हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में किस प्रकार का रिश्ता है या रिलेशनशिप है। ये बताता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। भगवान बाबा ने क्या बोला, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, जस्ट द कॉमा, जस्ट द पॉज। जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, आप कोई पंक्ति लिख रहे होते हैं, बीच में आप क्षण भर के लिए कॉमा लगाते हैं, विराम देते छोटा सा, वो आपका सेंटेंस या आपकी पंक्ति समाप्त नहीं हुई है, कंटिन्यू हो रही है, आगे चलेगी। इसी प्रकार से जो एक आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, उसकी यात्रा यहां समाप्त नहीं हो रही है, वह केवल अपनी बस, अपनी ट्रांसपोर्ट बदल रही है, शरीर को बदल रही है। जैसे आप यहां से भारतवर्ष जाते हैं, यहां से पहुंचते सिंगापुर, वहां जाके प्लेन को बदलते हैं, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से आत्मा एक जगह से यात्रा पूरी करके एक शरीर के अंदर फिर दूसरे शरीर में जाती है। यात्रा पूरी नहीं होती है यहां तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। मैं जरा लौट के जाता हूं दान की ओर। आप जरा सोचेगा, जो हम आज के जमाने में जो दान करते हैं, नचिकेता ने तो वहां अपने पिता को रोका गलत दान करने से, तो क्या हम अपने घरों में ऐसा करते हैं? क्या हम अपने घर वालों को पाप से बचाना चाहते हैं? क्या हम दान की महिमा को समझते हैं? क्या ये हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए? ज्यादातर यहाँ देखने में आता है हम किसी पंडित को पुजारी को घर में बुलाते हैं पूजा करने के लिए। पूजा के बाद उन्हें दान देते हैं। दान क्या देते हैं? एक कमीज दे देंगे, एक अंगोछा दे देंगे, तौलिया दे देंगे, कुछ बर्तन दे देंगे, कुछ सब्जी, कुछ दाल, कुछ चावल, आटा, चीनी और चंद पैसे दे देंगे। जरा विचार कीजिएगा, अगर एक ब्राह्मण एक हफ्ते में दो दिन पूजा करवाता है या पूरे साल में वो 100 दिन पूजा करवाता है, उसको 100 बार दक्षिणा मिलती है, वो हर आदमी उनको एक प्रकार की कमीज देता जा रहा है, शर्ट देता जा रहा है, अंगोछा देता जा रहा है, बेचारा ब्राह्मण क्या करेगा उसको? आपने अपनी ओर से तो अच्छा काम किया, एक नई कमीज लाकर दे दी, लेकिन 100 कमीजें ब्राह्मण करेगा क्या? कई कमीजें की बंद पड़ी रहेंगी, पैक पड़ी रहेंगी, खोल नहीं पाएगा। उस बेचारे के बाद कोई दूसरा चारा नहीं है, या तो किसी को दे दे, उपहार दे दे या बेच दे जाके, क्या करेगा वो? कहने का तात्पर्य यह है कि आप दान अवश्य दीजिए, लेकिन दान में थोड़ा सा बदलाव लाइए। आपने अगर $50 की एक कमीज खरीदी है, शर्ट खरीदी है, तो $50 कैश दे दीजिए, उससे काम तो आएगा, ब्राह्मण प्रसन्न तो होगा। क्योंकि हम लकीर के फकीर हैं। कहीं आपने पढ़ लिया कि भाई ब्राह्मण को अन्न दान दो, वस्त्र दान दो, द्रव्य दान दो, हमने अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, द्रव्य पैसे दे दिए। समय के अनुसार बात को समझिएगा। पहले जमाने में, उदालक कृषि के जमाने में गाय दान की जाती थी, गाय की महिमा थी, गाय का प्रयोग था, गाय काम आती थी। तो आज अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में यहां आता है, उसको गाय दान दे दे, वो क्या करेगा? कहां पालेगा? आप वो नहीं करते हैं। तो समय के अनुसार देखिए कि उसको किस चीज की जरूरत है या कौन सी वस्तु दूसरे बंदे के काम आ सकती है। जरा विचार कीजिएगा, आपको बात मानने की जरूरी नहीं है, विचार कीजिएगा, सोचेगा, मनन कीजिएगा, अगर बात आपको ठीक लगे तो अवश्य उस पर चलिएगा। हम बात कर रहे थे नचिकेता युवराज के द्वार पे पहुंच गया, वो युवराज घर पे नहीं है। क्या हम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हैं? पहला प्रश्न ये है, क्या हम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हैं? नचिकेता प्रसन्न चित्त में गया है, नचिकेता क्रोध में नहीं गया, मायूस होकर नहीं गया, घबरा के नहीं गया है, डर कर नहीं गया है। इसका मतलब यह है उसको मृत्यु से कोई डर नहीं है। लेकिन हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम मृत्यु को समझे नहीं है। बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड डेथ। हमें लगता है हमारी दुनिया लुट गई। जब किसी के घर परिवार में किसी का निधन होता है, बहुत दुख होता है। मैं भी गुजरा हूं इस स्थिति में से, जानता हूं, समझता हूं। लेकिन अगर हम शास्त्र को ये पढ़ के समझ लें कि ये मृत्यु हमें सिखा रही है शरीर को बदल के लक्ष्य को बनना, लक्ष्य क्या है? अगर ये समझ लें कि हमारी यात्रा इस जन्म में केवल यहां तक की थी, आगे हमें अगले जन्म में आगे यात्रा पूरी करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? कदाचित हमने मृत्यु की तैयारी नहीं करी। चाहे आपकी उम्र 70 साल की हो या 80 साल की हो या 100 साल की हो, सहस्त्र ईयर तक आप जिले, सहस्त्र सालों तक, माफ कीजिएगा, जिले आप, वर्षों तक जिले, लेकिन हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। अब मृत्यु की तैयारी क्या होती है, पहले यह सोचा जाए। जब किसी की मृत्यु होती है तो प्रश्न पूछा जाता है हाउ डिड ही डाई, कहते हो ही हैड एन हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा बेचारा मर गया। वाह, हाउ डिड ही डाई, एक्सीडेंट। हाउ डिड ही डाई, डिजीज। हाउ डिड ही डाई, कैसे मरा। कोई कहता है बीमारी थी लंबी बीमारी से, कोई कहता है बीमार था बहुत समय से बीमार था लंबी बीमारी थी, कोई कहता है दिल का दौरा, कोई कहता है उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कोई कारण बता दे जाता है। कभी हमने ये पूछा कि वाई आर वी बॉर्न, हम पैदा क्यों हुए हैं? नहीं ना, बच्चा पैदा होता है इतनी खुशियां मनाई जाती हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। हम इस संसार में इसलिए आए हैं, वी आर बॉर्न बिकॉज वी डिड नॉट डाई प्रॉपरली इन द लास्ट लाइफ, क्योंकि हम पिछले जन्म में सही तरीके से नहीं मरे हैं, इसलिए हम जिस जन्म में वापस आए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट डाइंग प्रॉपरली, इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक से मरे नहीं है। अगर मृत्यु ठीक से नहीं होती तो जन्म अवश्य होगा। जन्म का कारण है मृत्यु, द रीजन फॉर बर्थ इज ओनली डेथ, इम्प्रॉपर डेथ। इम्प्रॉपर बोलना गलत होगा, डेथ इज इटसेल्फ एनफ, अदरवाइज वी विल से सेल्वेशन, अन्यथा बोलेंगे मुक्त हो गया। क्योंकि हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते इसलिए बारंबार जन्म लेते हैं, कोई ना कुछ संदेश सीखने के लिए, कोई ना कोई काम करने के लिए माना पड़ता है, अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आना पड़ता है। तो क्या मतलब हुआ, हम कर्मों से बाहर नहीं जा पा रहे, हम अपने प्रारब्ध को ठीक से नहीं निभा पा रहे, हमारे क्रियामान कर्म ठीक नहीं है, आगामी कर्म ठीक नहीं है, हमारे संचित कर्म इतने गंदे पड़े हुए हैं कि उनको हम भस्म नहीं कर पा रहे। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे हम, ये कर्मों का सिलसिला क्या है। केवल इतना सुने, हाउ डू वी डाई प्रॉपरली, हम ठीक से मरे कैसे। मरने के लिए कोई कला चाहिए क्या आपको, क्या टाइमिंग चाहिए, या मुहूर्त चाहिए, या कोई जगह चाहिए, कोई प्लेस चाहिए, कोई स्पेस चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, बैंड बाजे बज रहे हो, क्या चाहिए। जिस दिन हमारे भीतर से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, जिस दिन हमारी यात्रा परमात्मा की ओर लीन हो जाए, जिस दिन मैं अपनी वासनाओं को भस्म कर दूं, जिस दिन सात्विकता मेरे कण कण में बस जाए, जिस दिन मेरे आराध्य देव मेरा केवल एक अंतिम लक्ष्य और एक और केवल एक लक्ष्य बन जाए, जिस दिन मेरी सांस सांस केवल अपने एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाए, जिस दिन मेरे सारे कर्म मन से हो, वाणी से हो, या शरीर से हो, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लग जाए, जिस दिन मैं हर दिशा में हर जगह कण कण में ईश्वर के दर्शन करने लग जाऊं, और मृत्यु आए भी मुस्कुराते हुए अपने शरीर को छोड़ जाऊं, क्योंकि मैं जान जाऊं कि मेरा लक्ष्य क्या है, जिस दिन ये समझ आ जाए कि मैं करता नहीं हूं, मेरा कोई कर्म नहीं है, कर्म की फल की बात छोड़िए। दूसरी बात, हम इत्यादि की बातें हमेशा करते हैं, लेकिन क्या हमने आरंभ करी, क्या हमने शुरू करी, क्या हम उस ओर बनना चाह रहे हैं, क्या हमारा प्रयास है। और नचिकेता तीन दिन तक यमराज के द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहा, उसको भोजन देने के लिए, जल देने के लिए वहां के लोग आए, वहां के लोग अर्थात वहां के कार्यकर्ता वर्कर्स सर्वेंट्स जो यमराज के घर में काम करते हैं, लेकिन यमराज ने एक अन्न का दाना नहीं लिया, जल की बूंद को नहीं पिया, तीन दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा, जब तक मेरे सामने यमदेव नहीं आएंगे, मृत्यु देव नहीं आएंगे।
सत श्रीकाल दोस्तो, मैं थोड़ा अपना अमरीक, अपनी बोली अपना माण, नचदा पंजाब प्रोग्राम, पंजाब पंजाबीयत जिथे भी बसदी है ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:45 ਤੱਕ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ 104.6 ਪਲੈਨਟ FM ਤੇ www.planetaudio.org.nz/ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ
Would you like to know more about your own self, your surroundings, and the universe? Are you interested in becoming the master of your own future? Tune into 104.6 Planet FM every Monday to Friday from 1:35 p.m. and listen to Radio Buddhist Youth Association, Chinese broadcast. Also, if you're interested in Buddhism, there are books in both Chinese and English, free. Please write to us at The Buddhist Youth Association, P.O. Box 82146, Highland Park, Harwick. Take charge and don't miss this great opportunity.
Ravi Grover will be back next Sunday morning at 7:15 with the teachings of Satya Sai Baba for our Hindi listeners. If you'd like to listen to the Satya Sai Baba programs again, go to our website, planetaudio.org.nz, and click on Gujarati or Hindi. In a few minutes, Krishna Kanta Devi Dasi joins us on the weekly program Krishna Consciousness at 7:50.
Catch up with the Bridge Zone crew.
Listen to the banter on bidding, leads, and a stealing of kings.
What the heck?
We ask the hard questions. No subject is safe. Should you play bridge with your spouse?
Is there gender inequality in bridge?
How hot are you?
How hot are you?
It's like eavesdropping on someone's conversation.
A postcard from Scotland.
Views from the experienced player to the improvers.
Join us. The fun way to discuss bridge dynamics.
Bridge, easy to learn, hard to master.
Catch the Bridge Zone on Planet 104.6 FM every Wednesday at 9:25 p.m.
បាទជួយសំឡេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលក 104.6 FM Planet FM
បាទវាជួយយើងផ្សាយនៅក្នុង2ដងក្នុង1សប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:15 នាទីនិងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 11:35 រហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំឡេងខ្មែរ
ហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននីវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងចា
៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអស់បងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែអញ្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
ហេលោកចក្រាកុំអល់ចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetaudio.org.nz/somdeingkhmae
Auckland Council has a goal of zero waste to landfill by 2040. That means recycling, composting, reusing and repurposing materials. Here's another zero waste tip on Planet FM. The Waitakere Transfer Station has recently become the Waitakere Resource Recovery Park and is home to the Tipping Point CRC. They sell everything from books, clothes, furniture and decor to construction materials and bicycles. Go check it out. A total of 147,000 tons was saved from landfill services in 2024. Find out all the info at wastenothing.co.nz.
Backs against the wall. The voices in my head playing with my heart. see flowers start.